नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियाँ, देश दुनिया की बड़ी खबरें। गायक के, जिनका असली नाम कृष्ण कुमार कुनाथ था, के आकस्मिक निधन के बाद हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है। 31 मई को 53 वर्ष की आयु में कोलकाता के नजरुल मंच सभागार में उनके लाइव प्रदर्शन के बाद उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर वेस्ट बंगाल से बुधवार रात मुंबई पहुंचा। बता दें कि गायक का अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे होगा। केके की मृत्यु के बाद किए गए पोस्टमार्टम के प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई थी। केके के शव को बुधवार को पोस्टमार्टम के लिए SSKM अस्पताल ले जाया गया। मंगलवार रात नजरुल मंच सभागार में लाइव गिग प्रदर्शन करने के तुरंत बाद केके को उनके कोलकाता होटल के कमरे में बीमार पड़ने के बाद अस्पताल ले जाया गया। गायक 53 वर्ष के थे और उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। केके को रात करीब 10 बजे अस्पताल लाया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उसका इलाज नहीं कर सके, अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अचानक हुए एक विस्फोट में 3 सैनिक घायल हो गए हैं। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि विस्फोट एक निजी वाहन में हुआ जिसे किराए पर लिया गया था। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है। शोपिया के सेडो में एक निजी किराए के वाहन के अंदर एक विस्फोट हुआ। कश्मीर जोन पुलिस द्वारा सुबह एक ट्वीट पढ़ा गया जिसमें पुलिस महानिरीक्षक IGP कश्मीर विजय कुमार के हवाले से लिखा गया, विस्फोट की प्रकृति और स्रोत, जो हथगोले के कारण या वाहन के अंदर पहले से लगाए गए IED या बैटरी की खराबी से हो सकता है, इसकी जाँच की जा रही है और इस बारे में जल्द बताया जाएगा। ये घटना शोपियां जिले में आतंकवादियों द्वारा एक नागरिक को गोली मारने के एक दिन बाद की है। उनकी हालत स्थिर बताई गई है। केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में नागरिकों पर हमले में वृद्धि देखी है। इस सप्ताह की शुरुआत में सांबा जिले में आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने के बाद एक स्कूल शिक्षिका रजनी बाला की गोली लगने से मौत हो गई थी। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को भाजपा की सदस्यता लेंगे। उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेता CR पाटिल सदस्यता ग्रहण कराएंगे। हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके ये जानकारी स्वयं दी है। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित की भावनाओं के साथ आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्यक्रम में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बुधवार यानी 1 जून 2022 को चौंकाने वाली खबर दी। उन्होंने 2 ट्वीट किए। गांगुली के दूसरे ट्वीट के बाद उनके BCCI अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अटकलें लगने लगी। कयास लगने लगे कि क्या वह कोई राजनीतिक दल से जुड़ने वाले हैं, क्या वह भाजपा में शामिल होने वाले हैं। हालांकि अब गांगुली ने ऐसी सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने BCCI के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया। मैं एक नया एजुकेशन ऐप वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर रहा हूं। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। सौरव गांगुली ने 1 जून 2022 को दोपहर 2:08 पर किए गए पहले ट्वीट में लिखा, सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जो शुरू होती है। अधिक जानने के लिए बने रहें। इसके बाद शाम 5:20 पर एक और ट्वीट किया। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच कांग्रेस नेतृत्व के गुरुवार को नई दिल्ली में एक बैठक के लिए शीर्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित हरियाणा के अपने 31 विधायकों को बुलाया है। कांग्रेस ने ये कदम पार्टी से निष्कासित नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मीडिया बैरन कार्तिकेय शर्मा के हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उठाया। शर्मा को हरियाणा में जजपा के 10 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें भाजपा के साथ साथ कई निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिलने की संभावना है। राज्यसभा के लिए कांग्रेस से अजय माकन प्रत्याशी हैं। पार्टी नेतृत्व पहले सभी विधायकों की बैठक करेगा और उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक रिसोर्ट में भेजेगा। हरियाणा पार्टी मामलों के प्रभारी विवेक बंसल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हाँ, पार्टी आलाकमान ने सभी विधायकों को गुरुवार को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा है। सभी विधायकों की बैठक 15 RG रोड दिल्ली में होगी। राहुल जी दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या कोई और बैठक की अध्यक्षता करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि प्रदेश में जाति आधारित गणना की जाएगी और सर्वदलीय बैठक के दौरान जो बातचीत हुई है इसी के आधार पर बहुत जल्द कैबिनेट का निर्णय होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में जाति आधारित गणना पर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब लोगों का, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, इसके तहत पूरा का पूरा आंकलन किया जाएगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार की ओर से जो भी संभव हो मदद की जाएगी। जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।